Yeah. अपने अपने भक्त से लाए गए भोजन की किस्मों के भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे को बदलाते हुए सारे ग्वाल बालों ने कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। वे एक दूसरे का भोजन थक थक कर हंसने तथा हंसाने लगे। कभी कोई मित्र कहता, कृष्ण देखो मेरा भोजन कितना स्वादिष्ट है, तो कृष्ण थोड़ा सा ले लेते तथा हंसते। इसी प्रकार बलराम, सुदामा तथा अन्य मित्र एक दूसरे का भोजन थक थक कर हंसते। इस तरह सारे मित्र परम हर्षित होकर घर से लाया हुआ अपना अपना भोजन करने लगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांधन शलाकया तस्मे श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य
क्योंकि दरिद्र व्यक्ति को
सभी वस्तु प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन की अपूर्ति होने के कारण बहुत दुख झेलना पड़ता है। लेकिन फिर यह नहीं कहा गया कि धन समान सब सुख माही, धन के समान कोई धनवान व्यक्ति के समान जगत में सुखी कोई नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन क्या कहा गया, संत मिलन जग को सुख माही। तो इसका एक अर्थ तो यही हुआ कि धन में सुख नहीं है, वरना तो यही लाइन में कह देते आगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। संत मिलन जग को सुख माही, संतों के मिलन में, संतों की संगति में, संतों के सानिध्य में ही वास्तविक सुख है। और वास्तविक सुख जिसको परमानंद धन कहते हैं, उनका आश्रय अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त करना है तो वही संतों के शरणों में ही प्राप्त होता है। यह बात 100% सत्य है। कहीं पर भी जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, लेकिन जहाँ संत नहीं है, जहाँ वैष्णव नहीं है, जहाँ भगवान हरि के प्यारे भक्त नहीं है, वहाँ भगवान नहीं है। यद्यपि कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन उसी शास्त्रों में कहा गया है कि मत भक्ता, मेरे भक्त जहाँ पर गाते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ। सब मुनियों के हृदय में नहीं रहता वहाँ पर सब छोड़कर कहाँ रहता हूँ, मेरे भक्त जहाँ मेरी लीला कथा दान करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ। सब जगह होते हुए भी साक्षात मूर्तिमान रूप में वहाँ पर मैं हाजिर हो जाता हूँ। एक संत बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि मान लीजिए हम लोग गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं और रास्ते में पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया, तो हवा के बिना कुछ नहीं चलता है ना। आदमी इंसान कोई व्यक्ति भी हवा में आ जाए तो उसकी चाल भी बदल जाती है। तो हवा से सब कुछ बदल जाता है, ये हवा का प्रभाव है। हवा का होना भी नहीं चलेगा, हवा का नहीं होना भी नहीं चलेगा, हवा अटक जाएगी तो भी नहीं चलेगा। सब प्रमाण सब कुछ ठीक ठीक चलेगा तो उसको अच्छा माना जाएगा। तो एक बार पंक्चर हो गया, हवा निकल गई, हवा बाजू में होते हुए भी हम इस गाड़ी से, इस पंक्चर हुए टायर से गाड़ी नहीं चला सकते, यदि भी हवा बाजू में है। हवा है बाजू में ही है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे हवा आ जाओ ऐसे नहीं आएगी, हवा होते हुए भी नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा, पेट्रोल अगल बगल में कहीं टायर पंचर वाले की दुकान ढूंढनी पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा। वहां जब जाएंगे, पंचर ठीक करेंगे, हवा डालेंगे, तब हमारा गाड़ी चलेगा। बिल्कुल उसी तरह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह होते हुए भी जब तक श्री राधा किशोरी के चरणों में भक्तों के सानिध्य में नहीं आएंगे, बिल्कुल उसी हवा की तरह होगा। इसीलिए हवा होते हुए भी नहीं डाल सकते, वैसे ही भगवान सर्वत्र होते हुए भी जब तक संतों के मुख से सुनेंगे नहीं, संतों के सानिध्य में बैठेंगे नहीं, तब तक हरि बहुत दूर होगा। यह सिद्धांत पुराण, यह सिद्धांत अटल है। तो बहुत चर्चा विचार न करते हुए आप तो भागवत से परिचित है, भागवत की महिमा मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, मैं आप सबके ही मुख से सुनता रहता हूँ। लेकिन भक्तों का भाव होता है कि कभी कभी मैं भी कुछ बोलता हूँ तो उन्हीं के मुख से सुना हुआ बोल देता हूँ। 7 दिन 6 दिन में सुनता हूँ, सुबह में 8 से 9 वही बोल देता हूँ। तो निश्चित रूप से सुनने में तो बहुत सारी त्रुटि रहती है, और कुछ वक्ता भी कुछ और कहना चाहता है, और कभी कभी ऐसा होता है हम भी कुछ और समझते हैं, है ना। ऐसा बहुत बार होते हैं कि वक्ता कुछ और कहता है लेकिन हम समझते हैं कुछ और है, उसमें भी कुछ कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। हफ्ते में मैं भी इसी तरह सुनता हूँ तो गड़बड़ी होगी, लेकिन आप भक्त तो हम परमहंस है, चार ग्राह है, अलग से क्षमा मांग लेता हूँ, इसलिए बाद में अगर कुछ निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं। कारण के वैष्णव परम दयालु होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और आप सबको जब देखा तो ऐसा भी हो गया कि वास्तव में दयालु है। अघासुर का वध प्रसंग यही चल रहा है। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान ने अघासुर पर जितनी कृपा की उतनी किसी पर, किसी जीव पर कृपा नहीं की। बड़ा रसप्रद प्रसंग है। जब अघासुर वृंदावन में आया तब उसकी लंबाई थी 8 कोस। 8 कोस माने गिरिराज महाराज की 7 कोस की परिक्रमा, मतलब 21 किलोमीटर, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो इतनी लंबाई है। और उसका मुंह, जब उन्होंने मुंह खोला तो उसका मुंह ऊपर का ओर है वो आकाश को और नीचे का तो जमीन पर थे। वो राह देख रहा था कि कब कृष्ण के साथ कब ग्वाल बाल आए और मैं हड़प लू। तो जब ग्वाल बालों ने देखा कि यहाँ पर कोई बड़ा, मन में अलग अलग भाव आया कि क्या है क्या नहीं, अलग अलग भाव किया, लेकिन फिर भी सभी ग्वाल बालों ने विचार करके मन में यही निर्णय किया कि चलो देखते हैं मुंह में जाकर क्या है। कृष्ण ने 2 बार 3 बार तो बचाया, वही रक्षा करता है तो वही रक्षा करेंगे। यही निर्णय के साथ सभी ग्वाल बाल है वो अजगर के मुंह में, वो अघासुर के मुंह में प्रवेश कर दिए। जब अघासुर के मुंह में प्रवेश कर दिया तो अजगर ने, अघासुर ने सोचा कि ये सब तो आ गए लेकिन मुख्य जो कलाकार है उसको लेना बाकी है अभी तक। तो उसकी प्रतीक्षा में वो बैठा था। कृष्ण ने विचार किया कि सब सखा अंदर चले गए हैं, अगर बाहर से उसको मार दूंगा तो हो सकता है हमारे सखाओं को भी हानि पहुंचे, है ना, ऐसा हो सकता है। तो क्या करें, अब इसके भीतर ही जाना, इसके भीतर ही जाना पड़ेगा। कृष्ण ने यह विचार करके उनके भीतर गए। जब उनके भीतर गए तो आकाश में कंस के कुछ सहसर देख रहे थे कृष्ण अजगर के अघासुर के मुंह में चले गए, अब निश्चित रूप से कृष्ण का वध हो जाएगा। उन्होंने जाकर कंस को कहा कि हे कंस महाराज, कंस ने कहा कि क्या शुभ समाचार लाए महाराज, कृष्ण चला गया अघासुर के मुंह में। कंस ने तत्काल आदेश दे दिया कि उत्सव का प्रारंभ किया जाए, सबको प्रसन्न किया जाए, धन इत्यादि बांटा जाए, लड्डू इत्यादि। तो वहां पर बुजुर्ग बैठा था, उन्होंने कहा कि अभी वो गया ही है, जब तक बाहर ना आए तब तक हमको राह देखना है। कंस ने कहा तब बहुत बड़ा उत्सव करेंगे, लेकिन आधा गया है इसके लिए थोड़ा, बहुत दिनों से इतना सुनने को भी नहीं मिला सब कृष्ण को, थोड़ा सा हानि हुई, इतने सुनने तरस रहा था बेचारा कंस सुनने के लिए, तो इतना सुना तो वो तो आनंद में आ गया। और अघासुर इसको थोड़ी छोड़ेगा तो बहुत आनंद आ गया, वो तो मिठाई बांटने लगा, प्रारंभ कर दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने अपना काम प्रारंभ किया। जब भगवान कृष्ण अघासुर के भीतर गए तो अघासुर ने मुंह अपना बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया तो भगवान कृष्ण ने हजारों हजारों पर्वत की भांति अपना शरीर बढ़ा दिया और अजगर अघासुर का सांस अटक गया, उसका प्राण बाहर आ गया। तब देवताओं प्रत्येक वध में जैसे करते हैं वैसे किन्नर गंधर्व अप्सराए नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे, वो ध्वनि ब्रह्मा ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। और ब्रह्मा जी सोचने लगे, वो तो अपने कार्य में बिजी थे, सृष्टि इत्यादि पालन में, तो वो सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है, अभी उत्सव ये देवतागण क्या हो गया उसको। तो ब्रह्मा जी ने आके देखा कि ओ भगवान ने अघासुर का वध किया, वो भी विस्मित हो गए लेकिन एक आश्चर्य बहुत बड़ा यह हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनकी ज्योति है वो तब तक आकाश में रही जब तक भगवान कृष्ण बाहर नहीं आया अजगर के मुंह से, और उस ज्योति के प्रभाव से दसे दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। अघासुर की ज्योति के प्रभाव से दसे दिशाएं प्रभावित हो रही थी, और जब भगवान कृष्ण बाहर आए तो भगवान कृष्ण के चरणों में वो ज्योति समा गई और भगवान ने उसको सायुज्य मुक्ति प्रदान की। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रसप्रद बात है, ऐसे कैसा होता है ना, तो भगवान को मारने के लिए आए, बाल बालों को मारने के लिए आए, जिंदगी में गलती से भी कभी किसी को सुख पहुंचाने की बात तो तुम्हें सोचा भी नहीं होगा। अघ का अर्थ ही होता है पाप, हम लोग करते तो नहीं लेकिन कभी कभी सोच लेते हैं कि बहुत बेचारा गरीब है उसको थोड़ा मिल जाए तो ठीक है, सोचते लेकिन देते नहीं है ना, लेकिन उन्होंने तो सोचा भी नहीं था। आप लोग की नहीं, मेरी बात कर रहा हूं, आप लोग हंस रहे इसलिए शायद आपको, जैसे भी आप लोग ब्रह्मचारी के पास तो देने के लिए क्या है, बस कुछ आपको इनकमिंग क्या हो तो इनका ही नहीं। तो अघासुर का अर्थ ही होता है पाप, लेकिन इसके पहले सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के परीक्षित से कहते, इसके बाद इस प्रश्न का समाधान करते हुए परीक्षित, भगवान की यह लीला कुमारावस्था में हुई थी, लेकिन बच्चों ने जाकर पोगंड अवस्था में उसी दिन कहा, एक साल बीतने के बाद कहा, वैसे ही कहा कि जैसे वो घटना आज ही हो रही है। तो आगे महाराज परीक्षित प्रश्न पूछेंगे, लेकिन इसके पहले एक श्लोक बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि क्यों महाराज अघासुर की मुक्ति हो गई, अब तो महाराज ही हो गए ना, क्योंकि सारी जी मुक्ति प्राप्त कर ली, तो अब भगवान के चरण स्पर्श से सब अघ समाप्त हो गए। तो यही श्लोक सबसे सुंदर है, सकृत यदंग प्रतिमांत राहिता मनोमयी भागवती ददो गति सएव नित्यात्म सुखानुभूत्य विदस्त मायोंतर्गतो हि किं पुनः। 12वें अध्याय का 39वां श्लोक है, सकृत यदंग प्रतिमांत राहिता मनोमयी भागवती ददो गति। ध्यान से श्रवण कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत अच्छा है, मननीय है, जीवन में भक्ति साधना में उत्साह बढ़ाने वाला यह श्लोक है। सकृत यदंग, सकृत का अर्थ होता है एक बार, है ना, सकृत शब्द बहुत बार आया है, सकृत का अर्थ होता है एक बार, भगवान रामचंद्र जी ने कहा है कि सकृत प्रपन्याय सवास्मिन सयाचते, है ना, एक बार कोई मेरे चरण में आकर कहता है कि मैं आपके, तो मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। वैसे ही कोई एक बार भगवान को प्रणाम कर लेता है तो उसको न पुनर्भवाय, उसका जन्म नहीं होता है। कोई एक बार भगवान हरि का नाम ले लेता है, एक बार, सकृत का अर्थ होता है एक बार। सकृत यदंग प्रतिमा अंतर आहिता, आहिता का अर्थ होता है बलपूर्वक, कैसे बलपूर्वक, मनोमयी। यद अंग, पहले यह शब्द समझ लीजिए, यद अंग यदंग प्रतिमा, यदंग का अर्थ होता है कि त्रिमूर्ति, यदंग जिसका अंग मतलब त्रिमूर्ति, और प्रतिमा का अर्थ होता है उसकी प्रतिमा, पेंटिंग इत्यादि, जैसे जगन्नाथ राधा गिरधारी गोविंद देव इत्यादि। तो मनोमयी कोई अपने हृदय में धारण करता है तो उस व्यक्ति को भागवती गति में दो, भागवती गति, भगवान की गति प्राप्त हो जाती है, अर्थात सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किस व्यक्ति को, बस ऐसे बैठ कर कोई एक बार राधा गिरधारी का स्मरण कर ले, देखने की तो बहुत दूर की बात है, दर्शन करने की बात नहीं कर रहा हूं, मन के भीतर, मन के भीतर हृदय में बलात्व आहिता, बलपूर्वक कोई व्यक्ति मन में बस पेंटिंग को देख ले, अगर आप लोग संडे आए हो और जो भाग्यवान जीव नहीं आ पाते संडे, उसको राधा गिरधारी का मोबाइल में फोटो तस्वीर खींचकर आप कल बीकेसी में दिखा दीजिए, उनका तो क्या कहना। ये मनोमय की बात हो रही है, आहिता बलपूर्वक कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। आप लोग पूछेंगे हुई है किसी की? हाँ हुई है, खटवांग महाराज। खटवांग महाराज जब स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए देवासुर संग्राम में, देवताओं कितना बड़ा आश्चर्य है कि देवताओं जब हारते थे पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पर आते थे और पृथ्वी पर राजाओं के पास याचना करते थे कि आप लोग थोड़ा आइए और हमारा मदद कर दीजिए। तो वहां से यहां से खटवांग महाराज स्वर्ग में गए थे, युद्ध तो जीता दिया, लेकिन देवताओं ने पूछा कि महाराज क्या सेवा करें। मैंने सब टीकाएं पढ़ी भागवत की, लेकिन उसमें कभी कभी संत महंत कहते हैं कि खटवांग महाराज ने कहा है कि भगवान का दर्शन करा दो, तो देवताओं ने कहा कि वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई टीका में कोई आचार्य ने नहीं लिखा है। उन्होंने सिर्फ प्रथम वर यह मांगा कि हमारी आयु कितनी है पहले तो वह बता दीजिए। उसका भी कारण टीकाकारों ने लिखा है कि जितनी आयु होगी उतना ही मांगेगी ना, ज्यादा वर बड़ा वर मांग के क्या करेंगे, और आयु ही नहीं है तो बड़ा ज्यादा वर मांग कर क्या करेंगे, वो हम लोगों की तरह तो थे नहीं कि एक बेटी का हो गया है तो सातवीं तक का सोचे। उन्होंने कहा कि पहले सबसे पहले यह बताइए हमें कि हमारी आयु कितनी है, आयु के अनुसार हम वर मांगेंगे कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं। अगर आयु ही कम रही तो बड़ा वर मांग कर क्या फायदा है ना। तो देवताओं ने कहा ठीक है, देवताओं ने कहा कि एक मुहूर्त कहीं लगा है, कहीं दो मुहूर्त, लेकिन एक मुहूर्त ही 48 मिनट बाकी है। तो खटवांग महाराज ने कहा कि अभी इसी वक्त मुझे अयोध्या में जाना है, अवध के राजा थे, कोई कोई लिखते भारत वर्ष में आए, लेकिन स्थान का एक विद्वान ने लिखा है कि वो अयोध्या में आए, क्योंकि अयोध्या में आकर दो फायदा है कि अयोध्या में कोई व्यक्ति ऐसे भी प्राण त्यागता है तो उसको चालो प्राप्ति होती है, और दूसरा कारण संतों ने यह बताया टीकाकारों ने बहुत सुंदर। एक प्रश्न उत्थापित किया कि भाई स्वर्ग में 48 मिनट बाकी है तो पृथ्वी पर आने की क्या जरूरत है, स्वर्ग में ही ध्यान कर लेते हैं ना, ध्यान तो मन से करना है ना, वहां का थोड़ी ना मंदिर करना वो करना है, स्वर्ग में ही ध्यान कर लेते 48 मिनट में, इधर अर्जेंट इधर आकर प्लेन दौड़ा दौड़ी करना बैठा ये सब की क्या आवश्यकता है, तो उधर ही ध्यान कर ले। लेकिन श्रीपाद जीव गोस्वामी ने लिखा कि भोग के कारण चित्त में बाधा आने की संभावना के कारण, क्योंकि स्वर्ग है वो भोग से भरा हुआ है और जहाँ भोग होता है वहां भजन में बाधा आती है, उस निर्णय से वह पृथ्वी पर आए। वो हम लोगों की तरह नहीं थे कि महाबलेश्वर जाने के लिए सोचे कि चलो महाबलेश्वर में जाकर भजन करेंगे, ऐसा नहीं था, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए, अयोध्या में आ गए क्योंकि वहां चित्त में कोई भी बाधा न आए, और हम लोग यहाँ से छोड़कर महाबलेश्वर इतने कम से कम बच्चे के बहाने कि बच्चों को जाना था ना, दो सिद्धांत कितना अलग अलग है, एक हम लोग ही जानते हैं कि भोग में दुख, और हम लोग ही अपने बच्चे को बच्चे के नाम से ही, खैर वो अपना विषय नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत से सुस्पष्ट होता है कि हमारा चित्त है वो बहुत संचल है, बहुत निम्न अवस्था में है, भोगों के प्रति बहुत आकर्षित है, इसीलिए हम भगवत स्थानों को छोड़कर तीर्थों को छोड़कर ऐसे भोगमय जहां भोग भरा हो ऐसे स्थानों में जाते हैं, और हम कहते हैं कि हम भजन करने के लिए गए, महाराज खटवांग भजन करने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, तो इसीलिए वह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गए, क्योंकि रजोगुण के प्रभाव में भजन होता नहीं है, चित्त में बाधा आती है, इसलिए वो रजोगुण को छोड़कर अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही उनका जीव छूट गया, उनका आत्मा छूट गया और भागवती गति मिले, भागवती गति प्राप्त हो गए। इसी बात को स्मरण कर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के कहते हैं, हे परीक्षित, तू क्यों चिंता करता है? खटवांग नाम नो राजर्षि, खटवांग नाम का एक राजर्षि हो गया जिन्होंने एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे पास अभी 7 दिन है, वह खटवांग ने प्राप्त किया था। एक व्याख्या यदंग प्रतिमांतराहित, दूसरी व्याख्या यद अंग प्रतिमा राहिता मनोमयी, यद अंग प्रतिमा जिसके, भागवत में एकादश स्कंद में भगवान की अलग अलग मूर्ति का वर्णन किया गया है ना, इसमें एक मनोमयी और एक मणिमयी बालुका इत्यादि का, उसमें मनोमयी का स्थान है। तो अंग का अर्थ करते हैं प्रतिमा, अथवा अंग संबोधन में भी ले सकते हैं, हे प्रिय परीक्षित, अंग संबोधन में भी शब्द यूज होता है। प्रिय व्यक्ति को जब संबोधन करते हैं तो अंग शब्द कहते हैं। तो यद अंग प्रतिमा, अंगस्य प्रतिमेति यस्य कश्चित् देवांगस्य अस्तु दूरे सर्वांग प्रतिमा। कोई प्रतिमा का एक अंग का, जैसे चरण कमल एक, हस्त कमल अथवा भगवान का मुख कमल, कोई एक अंग का मन में धारण कर लेता है तो उनकी भी भागवती गति, उनकी भी भागवत गति प्राप्त हो जाती। अस्तु दूरे सर्वांग प्रतिमा, पूरी प्रतिमा का दर्शन तो बहुत दूर की बात है। कोई व्यक्ति भगवान की मनोमयी एक अंग, श्री हस्त, श्री चरण कमल, श्री मुख कमल इत्यादि एक अंग का भी मन में स्मरण कर लेता है तो उनकी भी भागवती गति प्राप्त हो जाती, उनको भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अस्तु दूरे सर्वांग प्रतिमा, तो पूरे पूरी प्रतिमा को कोई मन में धारण कर ले तो उनके लिए क्या करना, ये तो दूर की बात है। सर्वांग प्रतिमा तो चक्रवर्ती बात कहते चैतन्य मत मंजूषा, एक टीका लिखा है चक्रवर्ती बात ने, 2-3 टीका लिखा है, इसमें से चैतन्य मत मंजूषा उसमें, तो सर्वांग पूरे अंग को हृदय के भीतर देख ले वो तो बहुत दूर की बात है। और एक व्याख्या करते हैं, भगवान की मनोमयी बलात् मनोमयी, ऐसा नहीं कि स्वाभाविक रीति, स्वाभाविक तो कभी आएगा ही नहीं हमको, लेकिन बाय फोर्स पूर्वक भगवान के पेंटिंग को अगर कोई देखकर एक बार कहीं भी और कभी भी देख लेता है, कहीं भी और कभी भी एक बार मनोमय स्मरण कर लेता है तो उनको भी भागवती गति। इसके पर कहते हैं सर्वांग स्फुरतिस्तु परम भाग्य भाजाम यो भवती, भाई पूरी पेंटिंग, पूरी मूर्ति, पूरा विग्रह भाग्य भाजाम यो भवती, कोई भाग्यशाली जीव को ही प्राप्त होता है, सबको नहीं। आप लोग कहेंगे कि ऐसा आपने कभी देखा है कि एक अंग किसी ने स्मरण किया और मुक्ति हो गई हो? हाँ, हजारों हजारों लाखों लाखों महापुरुषों ने भगवान के चरण कमल, तो बहुत दूर की बात है, उनकी ज्योत, उनकी ज्योत, उसके नख मंडल की ज्योत का स्मरण कर, एक बार स्मरण करके हजारों लाखों ऋषि मुनि पार हो गए। इस बात को अक्रूर महाराज भागवत में कहते हैं, जब भगवान कंस आदेश देता है कि जाओ अक्रूर, तुम कृष्ण और बलराम को लेकर आओ, दशम स्कंद के 38वें अध्याय के 7वां श्लोक है, कंसो बताध्याकृत मेत्य अनुग्रह। अक्रूर जी कहते हैं कि अरे कितनी बड़ी बात है, क्या आज कंस ने मेरे पर अति अनुग्रह किया, बहुत बड़ी कृपा बरसाई। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? आप जानते हैं कि कंस क्यों बुलाना चाहता है? आप तो कहते दृश्यंग पद्म प्रहितो मुनो हरे, कंस के भेजने से ही भगवान हरि जो अवतार साक्षात अवतार है उनके चरण कमल का आश्रय, उसके चरण कमल का दर्शन होगा। कौन है वो हरि, कौन है वो कृष्ण? तो कहते दुरत्ययम तम पूर्वे अतरण यल मख यन्नक मंडल त्रिषा, यत नख मंडल त्रिषा, जिनके नख मंडल की त्रिषा ज्योति का स्मरण करके पूर्वे अतरण, पूर्वे बहुत बहुत महापुरुष तर गए, इससे तर गए दुरत्यय तम अज्ञान रूपी अंधकार के सागर, जिसको पार करना दुष्पार है, उसी संसार सागर को महात्मा गण महापुरुष गण उनके चरण कमल की ज्योत के प्रकाश मन में स्मरण करके डर गए। लेकिन लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति रसम सिंधु अध्याय तेर, यह जरूरी नहीं है कि यह घटना सबके साथ घटित हुए है ना, कभी कभी विलंब हो जाता है, महापुरुषों के आश्रय के बाद भी कभी कभी विलंब हो जाता है और कभी कभी अवलिबंधित यह घटना घट जाती है, विलंब न भी हो जैसे विल्व मंगल ठाकुर है ना, विल्व मंगल ठाकुर ने भगवान के बारे में एक बार सुना तो उनको वैराग्य हो गया, वृंदावन में जाकर कृष्ण करुणामृत की रचना कर दी। चैतन्य महाप्रभु इसके विषय में कहते हैं कि करुणामृत संग ग्रंथ नहीं त्रिभुवन है, कृष्ण माधुर्य के जो प्रकाश उन्होंने किया, कृष्ण माधुर्य किसी को समझना है तो कृष्ण करुणामृत विल्व मंगल ठाकुर जी ने जो लिखा है उसमें कृष्ण माधुर्य रस भरा हुआ है, वो ग्रंथ लग गया एक वचन से, एक वचन से, एक ही वचन से, सकृत शब्द पर मैं बोल रहा हूँ, सकृत का अर्थ होता है एक बार, एक ही वचन सुना भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। सनत कुमार का प्रभुपाद जी उदाहरण दे दें, सनत कुमार भगवान के पास गए, भगवान के पास गए और भगवान के चरण में तुलसी गंध भक्त हो गए, तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 23वां श्लोक शायद याद नहीं, तो कभी कभी किसी किसी के साथ ये घटना घटित हो जाती है, घटना है घटित हो जाती है और कभी कभी विलंब भी हो जाता है। इसका अर्थ यही हुआ कि हम लोग जो साधन में लगे हैं उस साधन को तीव्रता से, तीव्र है ना भक्ति योग्य न यजेत परम पुरुष, तीव्रता से भक्ति साधन में लगे रहना चाहिए, यह प्रभुपाद जी का मत है भक्ति रसामृत। बहुत सुंदर एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं चक्रवर्ती पाद, भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक 13वां श्लोक, एक एक शोकानि धियानुभावय पादादि यावद् हसितं गदाभित जितं जितं स्थानमयो मथोदय धारय परम परम शुद्धयति धीर यथा यथा। गदाभित पादादि हसितं यावद् भगवान गदाभृत के चरणों से प्रारंभ करके हास्य युक्त मुखारविंद तक एक एक अंग को हृदय में धारण करना चाहिए। जब एक अंग में हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, जैसे हम ध्यान कर रहे स्मरण कर रहे भगवान के चरण कमल का, तो परफेक्ट भगवान के चरण कमल का ध्यान हो जाए और अपने हृदय में आ जाए, तब दूसरे अंग का एडी का इसके बाद जांघ का इत्यादि चरण से लेकर मुख मंडल तक भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होगी और स्थिर होगी। और मानसी सेवा, मानसी सेवा का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। मानसी सेवा करते करते भक्तों को उसका रस का आस्वादन भी प्राप्त हुआ है, ऐसा देखा गया है ना। महापुरुषों किंचन महापुरुषों को जैसे श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, कारण के मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है ना, शरीर से परे इंद्रिया है, इंद्रिया से परे मन है, और मन ही जिनका पूर्ण रूप से भगवान में लग गया हो उनका शरीर और इंद्रिया की तो क्या बात ही करनी है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसंग बहुत सुंदर है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार भगवान को खीर भोग लगाया और भोग लगाकर उन्होंने आस्वादन किया प्रसाद का मानसिक, हाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानसिक, वो खुद तो क्या खीर का भोग लगाएंगे, कुछ था ही नहीं उसके पास, तो राधा कुंड के तट पर भजन करते थे तो कहने के लिए तो सब कुछ था नहीं, लेकिन भीतर से सब कुछ था, वो तो कुछ भी करने के लिए कान के भक्तों के तो चरणों में ही अष्ट सिद्धि नवनिधि रहती है, जितना ही नहीं वो दूसरों को दे भी सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो अयाचक वृत्ति में वो भोजन करते हुए तो भगवान ने वो खीर का आस्वादन किया। इसके बाद प्रसाद के रूप में रघुनाथ दास जी ने भी वो प्रसाद लिया, रघुनाथ दास बीमार हो गई। बाबा जी बीमार हो गए, ब्रजवासी ने उस वक्त सिनाथ जी की सेवा में थे विठलेश जी, तो उसका एक स्पेशल वैद्य था। आजकल की तरह नहीं था, पहले अलग अलग संप्रदाय अलग अलग सब आपस में मिलजुल कर बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम रहता था। जब रूप गोस्वामी बीमार होते थे तो वल्लभाचार्य खुद औषधि भेजते थे और औषधि लेकर आते थे। आजकल अपने में ही गड़बड़े है, दूसरों की तो क्या बात ही करनी है ना, मैं ये ग्रुप का मैं वो ग्रुप का क्या, लेकिन भजन करना है कि ग्रुप ग्रुप करना है पूरे जीवन, भजन तो होता नहीं है, फालतू फालतू की चर्चा बहुत होती है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने गुरु महाराज के और राधा गिरधारी जी के, बहुत कसकस कसकस इस विषय में बहुत कसकस 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 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। पता नहीं भक्ति करने के लिए आते हैं या कुछ समझ में कोई कभी कभी नहीं आता है, लोग क्या करने के लिए आए, उनमें भक्ति में आकर भी बहुत बहुत माइंड लड़ाना पड़ता है कि किसके साथ क्या कहेंगे, किसके साथ क्या बात करेंगे, क्या होगा, ये होगा। भक्ति में आकर व्यक्ति अभय भय की मुक्ति के लिए तो व्यक्ति भजन करता है, और भय मुक्त नहीं होता है तो भजन में कुछ गड़बड़ी होगी ना। तो उस समय खैर वो दूसरी बात है, उस समय विठलेश जी और सिनाथ जी के लिए एक स्पेशल वैद्य था, भगवान भी बीमार हो जाते, ये ब्रजवासी का भाव है, ये ब्रज भक्ति वाला समझ पाते हैं कि भगवान कभी बीमार, हाँ हमारे जगन्नाथ जी बीमार हो गए हैं, अभी उनको भक्तगण औषधि भी लगाते होंगे, लगाते हैं ना, तो औषधि भी देते हैं ठाकुर जी को, तो वैसे ही सिनाथ जी के लिए स्पेशल एक वैद्य था। वो सिनाथ जी और विठलेश जी ये दोनों की ही वो सेवा चाकरी करता था। विठलेश जी को मालूम हुआ कि रघुनाथ दास बीमार हो गए हैं, तो उन्होंने उस वैद्य को भेजा वहां पर, तो उन्होंने नाड़ी चेक किया, तो बोले कि उन्होंने खीर खा लिया है। तो बगल में सब ब्रजवासी खड़े थे, आप पागल हो गए हैं क्या वैद्य जी, ये सांस भी हफ्ते में एक बार पीते हैं और आप कहते खीर खा लिया, ये कैसे हो सकता है, हम लोग जब तक देते नहीं तब तक तो खाते नहीं, सांस के अलावा कुछ सकते भी नहीं है। अगर मेरी बात गलत हुई, वैद्य ने कहा कि अगर मेरी बात गलत हुई तो जितने जितने मेरे पास शास्त्र है शरीर के नाड़ी के इत्यादि वो सब में राधा कुंड में बदरा दूंगा, लेकिन अभी निर्णय हो जाएगा कि उसके पेट के उसके उदर के भीतर खीर है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी खीर खाया ही नहीं था बहुत सालों से, साथ ही खाया था, तो उसका पेट ही ऐसा हो गया था कि खीर पचा नहीं पाए, तो उन्होंने कुछ दवाई दी वैद्य जी ने, और उन्होंने जब वॉमिट किया तो सचमुच में खीर बाहर आ गई, तो खीर खाई थी। तो मानसी सेवा, मैं यह कहना चाहता हूं भक्तों कि मानसी सेवा का इतना प्रभाव है कि मानसी सेवा करते करते खीर ने स्थूल रूप ले लिया, यदि वो मन में ही सब क्रिया हुई थी, तो ऐसे कोई भक्त हो जाए, ऐसे कोई मानसी सेवा में स्थिर हो जाए तो भागवती गति प्राप्त नहीं करेगा, वो ब्रज की ओर भागेगा, भगवान का प्रेमी हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। उनके लिए भागवती गति बहुत नीचे रह जाती है। ठाकुर जी का मानसिक रूप में खीर जिन्होंने खा ली हो और वो प्रत्यक्ष रूप में अपने उदर के भीतर आ जाए, फूल रूप ले ले, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में हर्ष विग्रह के मानसिक पूजा के विषय में एक कथा कहते हैं कि कोई ब्राह्मण आया था वृंदावन में, उन्होंने गंगा यमुना का जल लेकर खीर बनाया तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए देखा कि गर्म है कि ठंडा हो गया है, तो अभी लगाओ, तो उन्होंने मन में ही उंगली डाली तो उंगली जल गई, था नहीं ऐसे मन में ही उंगली डाली ऐसे किया खीर गर्म है कि ठंडा, तो उंगली जल गई। मानसिक रूप में वहां खीर नहीं थी। कितने अद्भुत और आश्चर्य की घटना है। मंगला आरती में आने के बाद भी हजारों प्रिया अगल बगल में सब भक्त बन रहे थे, सभी ओर से महामंत्र की ही धुन कान में जाती है, लेकिन फिर भी हमारा मन कहीं और जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी हमारा मन कहीं और जाता है, कहीं और जाता है। तो सुबह मंगला आरती के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में हमारी यह स्थिति, सत्वगुण में यह स्थिति है, तो दोपहर और शाम की तो हरे कृष्णा। तो वैसे खत्म नहीं किया, आप लोग मत सोचे खिचड़ी मिलेगी, लेकिन 9:30 बजे, अभी 15 मिनट है, 15 मिनट मतलब बहुत टाइम है। भक्ति रसामृत सिंधु ने कहा गया कि अकिंचन भक्तों के लिए मानसिक सेवा की विधि कही गई है। प्रत्यक्ष घर में मंदिर में आकर जो भक्त करते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मानसिक सेवा की विधि, उन भक्तों के लिए भी है, सब भक्तों के लिए। मन में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कभी कभी एक आदत भी रखनी चाहिए कि मन में इतनी देर हम भगवान का स्मरण ध्यान ज्योति का नहीं, मैं करो भगवान का गिरिराज जी का हर रोज 10 से 15 मिनट, 7 बजे 8 बजे 5 बजे 4 बजे अगर जग जाए तो परिक्रमा, मानसिक रूप से परिक्रमा देंगे, ये वो अपने अपने भाव के अनुसार कुछ ना कुछ मानसिक सेवा का एक प्रयास व्यक्ति को, इससे मन की शुद्धि होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मन को शुद्ध करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट औषधि दवा महामंत्र को ही मुख से जपिए, कान से सुनिए, मन से स्मरण कीजिए, सब औषधि की एक ही औषधि, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
हम लोग भक्ते तो है, पहला स्टेज पर तो है, लेकिन दूसरा और तीसरा है ना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसका ऑपरेशन जरूरी है। आधा महामंत्र से हम किसी के साथ मंगला आरती में आए तो भी बात करने लगते हैं, या तो कोई दो व्यक्ति कोने में जाकर कुछ घुसफुस करता है तो वहां कान हमारा रहता है, ये क्या बात करता है, यदि भी हमारे कुछ काम की नहीं है, ये सब कचरा है। भरी भरी उधर विष खायो है तो नॉन हरामी दुर्गा जी कर देगी, पूरे जीवन यही किया। जिन तन दियो ताही को बिसरायो ऐसो नॉन हरामी, आए रे दुर्भाग्य है हम सबका। भगवान की लालसा इतनी हो जाए कि चलो आज बाहर नहीं घूमना है, कोई प्रभु जी प्रवचन कर रहे हैं कि क्या कहते हैं भगवान के बारे में, चलो तो जरा सुन लेते हैं, वो व्यक्ति भक्ति का अधिकारी होता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, ऐसी उत्कंठा ऐसी लालसा ही भक्ति प्रदान करती है। आप सब भक्तों में है, मैं मेरे लिए कह रहा हूं कि ऐसी उत्कंठा अगर आ जाए भीतर, ऐसी कम से कम भावना भी आ जाए ना, तो अभी एक दिन जरूर आएगी तीव्रता से। कल वनमाली प्रभु कह रहे थे बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब करते हैं तुलसी को जल वैष्णव की सेवा इत्यादि करते हैं, साथ में अपराध भी हो रहा है, लेकिन भक्ति में तीव्रता नहीं है, शिथिलता है, हो रहा है ठीक है हो रहा है, तो क्या था क्या होगा, मृत्यु के बाद फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, फिर यही घटना होगी, मनुष्य शरीर मिलेगा थोड़ा बहुत, फिर अपराध होगा, फिर जल डालेंगे पूजा करेंगे फिर यही चक्कर चलता रहेगा, यही चक्कर चलता रहेगा, मुक्त नहीं होंगे, मुक्त शिथिलता के कारण भक्ति में तीव्रता। आइए अब उस अघासुर के प्रसंग में जाते हैं। आप लोग कह सकते खटवांग इत्यादि तो भक्त थे, भजन अनुकूल थे, भगवान को अनुकूल थे, इसलिए उन्होंने भागवती गति प्राप्त की थी। लेकिन अघासुर को प्रतिकूल भाव में थे, भक्ति भाव से उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। और आप ही एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि भक्त्या एकम एक भक्त्या हम एक या ग्राह्य, भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूँ अथवा भक्ति से ही मैं ही जाने जाता हूँ इत्यादि जो भी कहे हैं। आप एक तरह ऐसा कहते हो और एक तरह अघासुर का चक्रवर्ती जी कहते हैं कि ये सब नियम नीति नियम है ना, वो भगवान कृष्ण के समय नहीं लागू होते। भगवान कृष्ण जब आते हैं अपनी असाधारण कृपा के प्रभाव से अघासुर इत्यादि तैर जाते हैं, और जब भगवान कृष्ण होते हैं तो दशम स्कंद के 29वें अध्याय में रास पंचाध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी अपना मत रखते हैं, कामम क्रोधम लोभम, काम से क्रोध से द्वेष से मोह से किसी भी तरह भगवान से तन्मयता रखे तो व्यक्ति निश्चित रूप से कृष्ण को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। और जब अघासुर को मार दिया भगवान ने, उसका उद्धार कर दिया, मार तो क्या दिया, उसका उद्धार कर दिया, तब कुछ दिनों तक उनका जो शरीर था वह ब्रज में ही था। तो भगवान कृष्ण ग्वाल बाल सखाओं के सहित वहां रोज खेलने के लिए जाते थे, तो उनके खेलने की क्रीड़ा मैदान हो गया था, गुफाएं हो गई थी। तो ब्रह्मा शिव इत्यादि जिन शरण कमलों की याचना करते हैं, जिन शरण कमलों का ध्यान करते हैं, अघासुर के मृत शरीर को बारंबार प्राप्त होता रहता है। जीवित व्यक्ति को हजारों लाखों साल तक तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान का श्री चरण कमल अघासुर के मृत्यु के बाद उनके शरीर को बहुत दिनों तक उनको स्पर्श प्राप्त हुआ भगवान के श्री चरण कमल। इसलिए भगवान ने प्रतिकूल भाव को भी अनुकूल बना लिया, तो भगवान की सेवा ही हो गई। तो आप लोग कहेंगे तो उसको सायुज्य क्यों प्राप्त हो गया, उसको ब्रज में क्यों नहीं रखा, है ना, तो ब्रज में ही रख लेते, प्रेमी बना देते, सायुज्य अपना रूप देकर वैकुंठ में क्यों भेज दिया। ये बहुत ऊंची बातें हो रही है। तो वहां पर समाधान किया गया है कि भक्ति के अभाव के कारण उनको वैकुंठ में भेजा, उनमें पूर्ण भक्ति नहीं थी इसलिए उसको ब्रज धाम प्राप्त नहीं हुआ, उसमें प्रेमा भक्ति नहीं थी इसलिए उसको ब्रज नहीं प्राप्त हुआ। तो यही श्लोक का सार है, यही श्लोक में कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की मनोमय मूर्ति को बलपूर्वक एक बार हृदय में धारण कर लेता है तो व्यक्ति भागवती गति प्राप्त कर लेता है। कौन भगवान, सैव नित्यात्म सुखानुभूत्य युधस्त मायोतर गतो ही किम पुनः, नित्य अपने आत्म सुख में परमानंद स्वरूप में रहने वाले जिसके विग्रह में लेश मात्र भी माया का प्रभाव नहीं है, वो भगवान साक्षात रूप में अघासुर के मुंह में प्रवेश कर जाए और अघासुर को मुक्ति न मिले, इसमें कहना ही क्या है ना। एक तो हम ध्यान करके भगवान को बुलाते हैं, वो भी उसमें भी कोई ठिकाना नहीं, वो बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भगवान कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, कभी कभी होता है तो बहुत बल करने के बाद भगवान नहीं आते। तो ये भगवान परमानंद स्वरूप भगवान साक्षात उनके मुंह में ही चले गए, उनके हृदय में चले गए, उनके हृदय के भीतर चले गए तो उस अकासुर को मुक्ति न मिली। इसमें क्या आश्चर्य है? महाराज परीक्षित, महाराज परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि वो आपने कहा था कि 5 साल ने 6 साल उसका क्या हुआ? हम लोगों की तरह तो थे नहीं वो कि जो भी हुआ होगा कल देख लेंगे, आज प्रभु जी प्लीज जाने दीजिए, अब 9:30 हो गए लेकिन अभी 5 मिनट है। तो प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी ने, उसके प्रश्न की सराहना की और सौते 13वें अध्याय में सौते श्लोक से शुरू किया फिर के परीक्षित, जब भगासुर का वध हो गया तो बाल बाल सब वैसे तो मृत्यु के मुख से ही आए थे, भगवान की अमृत भरी दृष्टि से वो सब जीवित हो गए, उसका लेश मात्र भी दुख नहीं रहा, लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा मन में विचार किया कि अब ठीक है इन लोगों को थोड़ा खिलाया पिलाया जाए। इस विचार करके भगवान ने कहा कि तथा भगवत ज्ञान मृत्यु रक्षित अवस्थ पालकान शरीर पुलिन मानिय भगवान इदम अब्रवीत, सरित पुलिन यमुना के किनारे कहीं पर जाए भगवान ने उस आदेश दिया, भगवान ने उस आदेश सभी बाल बालों ने एकाग्री मत से कहा हाँ ठीक है चलो, कृष्ण ने कहा अहोति रम्यम पुलिनम वयस्या स्वकेलि संपन्न रुद्रलास्य बालुकम स्फुटत सरोर्गंध हताल पत्रिक ध्वनि प्रतिध्वान सद्रुमालुकम। हे सखागण, भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सखागण, अहो अतिरम्य पुलिनम, बहुत सुंदर अत्यंत सुंदर यह स्थान है, नदी का किनारा है, स्व के लिए संपन्न, हमारी क्रीड़ा के लिए, हमारे खेल के लिए, गिल्ली डंडा कबड्डी इत्यादि खेल के लिए यह स्थान उचित है, यहाँ की बालू है वो मृदुल है, मखमल की तरह है, सुटत सरोस गंध, यहाँ के कमल की खुशबू आ रही है, और ध्वनि प्रतिध्वनि भवर भवर खुश कमल के भीतर भवर गुनगुना रहे उसकी प्रतिध्वनि हो रही है, जो जंगल आकाश में इत्यादि वृक्षों में जो पशु पक्षी है वह भी प्रतिध्वनि कर रहे हैं, ऐसा बहुत सुंदर पिक्चर आचार्यों ने उस पर बहुत बहुत लिखा है लेकिन समय नहीं है, ऐसा भगवान ने ऐसा सुंदर वर्णन किया। इसके बाद कहते अब तक भोक्तव्य अस्मा भी जीवा रूढ़ सुधार देता वत्ता समीप पिछवा शरंतु सनकेत ऋणम। भगवान ने कहा कि यहाँ धीरे धीरे सारा करेंगे और हम भी समय तो हो ही गया है भजन का और हमारे भजन का भोजन का भी समय हो गया है तीसरी का दोनों का, लेकिन दो श्लोक और हैं कि भगवान ने कहा कि यहाँ विलंब नहीं करना चाहिए, समय हो गया है इसलिए भोजन कर लेना चाहिए। सभी सखाओं ने कहा, सभी ने अपना अपना सीखा है वो खोल दिया और बैठने की परिपाटी बता रहे कैसे बैठे थे, यथाम वो रूह करने का या जैसे कमल कमल होता है, कमल के भीतर एक कर्णिका होती है और उसके चारों ओर पत्ते होते हैं ना, तो सब भगवान की संकल्प शक्ति से सबको ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं, कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं। आप लोग खिचड़ी प्रसाद लेने के लिए जाओ तो वहाँ पोस्टर लगा हुआ है, मुझे लग रहा है कि यही वर्णन का वो पोस्टर है वहाँ पर, तो सभी को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण मेरी ओर देख रहे, कृष्ण मेरी ओर देख रहे। इसके बाद कहते केचित पुष्पीर दल केचित पल्लवेरंपुरे, सब लोगों ने अपना अपना खाना पीना निकाला, कौन कौन क्या क्या लाया था उसका वर्णन है। इसके बाद यह श्लोक में कहते सर्व मिथ दर्शयंत स्वस्थ भोज्य रुचिंकृत कसंत हास्यंत अभ्यवजुरु सहेश्वरा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने मित्रों को, अपने मित्रों के साथ भोजन करने लगे, दर्शयंत स्वस्थ भोज्य रुचि, जो जो अपने अपने भोजन लाए थे वो दर्शयंत सब दिखाने लगे, कभी कभी हंसने लगे, कभी कभी हंसाने लगे। इस तरह भगवान कृष्ण के साथ सभी बाल बालों भोजन का आनंद लेते थे, कैसे हंसते थे और कैसे हंसाते थे उस पर आचार्यों ने लिखा था, खुद हंसते थे, कभी कभी लड्डू में पकोड़ा में नीम के पत्ते डालकर दूसरे को खिला देते थे कि लो ये बहुत अच्छा लड्डू मैं लाया हूँ, तो लड्डू खाता था तू 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 करे थे, तो ऐसे सब लोग हंसते थे। और कभी कभी कोई कोई जब बात करते थे कृष्ण के साथ तो उसके नीचे से कुछ पत्र ले लेते थे, उसका हाथ सीधा बालों में जाते थे, तो सभी वो ये भूल गया ऐसा हो गया, ऐसे बहुत सारे भाव दिए गए हैं। लेकिन मैं ये तो ऐसे सब हंसाते थे लेकिन भगवान कृष्ण ने और ग्वाल बालों ने देखा कि बछड़े नहीं चल रहे हैं। भगवान कृष्ण में हाथ में दही मिश्री लेकर गए ढूंढने के लिए। दही मिश्री लेकर क्यों गए, वहां पर आचार्य लिखे है कि ढूंढते ढूंढते भी खा सकते हैं, पा सकते हैं अपना भोजन, इसलिए दही हाथ में लेकर गए और ढूंढने लगे। इधर वन में देखा, समुद्र नदी के किनारे देखा, लेकिन कहीं पर भी तो इधर उधर वो बछड़ों को ढूंढने लगे। तो ढूंढने दीजिए, अगले संडे हम लोग मिलवा देंगे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि धैर्य से बैठे। लोकाध्यक्ष लोगों का भी धन्यवाद समय पर आ गए।
हरे कृष्णा। भावना व्यक्त करेंगे नतनाथ प्रभु का। हरे कृष्ण महामंत्र से।